ब्रह्मा जी ने आंख खोले तो भगवान की विचित्र रचनाओं पर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या है, कैसे हुआ। सृष्टि का विस्तार तो ब्रह्मा जी ने किया, लेकिन ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो उसके पहले भी तो कुछ था। जैसे फैक्ट्री में चीजें बनती है, लेकिन चीजें बनाने का रॉ मटेरियल तो पहले ही होता है, तो ऐसे ही ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य करते करते ब्रह्मा जी का मन ना तो गहरा चला गया कि ब्रह्मा जी का पसीना पसीना हो गया कि क्या है। उस पसीने पसीने से ब्रह्मा जी और गहरे चलते गए तो आवाज आया तप 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 करो। तप करने का मतलब है कि इंद्रियों को मन में लीन करें और मन को बुद्धि में लीन करें। तो बुद्धि को परिश्रम नहीं होगा, बुद्धि को शांति मिलेगी तो शांत स्वरूप परमात्मा में टिकेगी। तो शांत स्वरूप परमात्मा में टिकने से मति का गाढ़ापन हो जाता है। जो हल्की हल्की वस्तुओं में मति उलझती है तो छिछरी हो जाती। जैसे पीपल का पत्ता है तो हल्का सा है, छिछरा है, तो जरा सी हवा आती जिधर को तो उधर को फड़कता रहता है। लेकिन सुमेरु पर्वत तो चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, फिर भी स्थिर रहता है। जिसने तप किया है वो उस परब्रह्म परमात्मा में स्थित होता है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और जिसका कभी अंत नहीं होता, उस परमेश्वर में मति प्रतिष्ठित हो जाती है। मति जब उस परमेश्वर में प्रतिष्ठित हो जाती है तो मति का नाम बदल जाता है और वो प्रज्ञा हो जाती है। ऋतम भरा प्रज्ञा, साधारण प्रज्ञा नहीं, ऋत माना सत्य, सत्य स्वरूप ईश्वर से भरी हुई प्रज्ञा, उसको बोलते हैं ऋतम भरा प्रज्ञा। मनुष्य जब प्राण छोड़ता है, मरता है, तो उसके पहले उसके चित्त में जो वासना होती है, जो निश्चय होता है, उसी के अनुसार उसका मन और प्राण मति के निश्चय के अनुसार ही लोक लोकांतर में गति करता है। जैसे आपकी मति में निश्चय हो गया कि हम शिविर में जाएंगे, चाहे उत्तरायण की ठंड बरसो, चाहे चेटीचंद की गर्मी पड़ो, हम तो शिविर में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, साधन करेंगे और जो कुछ कठिनाइयां सहेंगे वो तब हो जाएगा। कीर्तन सत्संग से आनंद आएगा और साधन से मति की शुद्धि होगी, परमात्मा के रास्ते में आगे बढ़ जाएंगे। तो यह निर्णय मति ने किया कि शिविर में जाना है। तो मन ने और प्राण ने योजना बनाई कि फलानी तारीख जाना है, फलानी गाड़ी से जाना है, टिकट लेना है। हाथों ने हिलचाल की, पैरों ने यात्रा की, आंखों ने देखने का काम किया। निर्णय केवल मति बाई का था, ऑर्डर उसका था। बाद में सब काम लग गए और आप लोग इधर पहुंच गए। तो फिर इन इंद्रियों को जैसा मिलेगा उस प्रकार का इंद्रियों का आकर्षण और मन का मनन बनेगा। मन के मनन और इंद्रियों के आकर्षण का निचोड़ मति के आगे जाएगा कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, दूसरी बार ये करेंगे, ये ले आएंगे, ये न लाएंगे, ये खाएंगे, ये न खाएंगे। अब मति में अगर अच्छे संस्कार हैं, तप से युक्त मति है, तो ये चपरासियों की और कारकुन की, हेड क्लार्क की और क्लार्क और चपरासियों की, चपरासी है कर्म इंद्रियां है, क्लार्क है ज्ञान इंद्रियां और हेड क्लार्क है मन, इन सब की बात पर जजमेंट मति कैसी देती। मति अगर बढ़िया होगी तो उनकी बढ़िया बात पर हाँ बोलेगी और घटिया बात को काट के फेंक देगी। मति अगर घटिया होगी तो उनकी घटिया बात को हाँ बोल देगी और बढ़िया बात पर ध्यान नहीं देगी। तो इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारे पास ये समाचार तो लाती है इंद्रियां, आंख दृश्य का समाचार भरती है, कान शब्द का समाचार भरता है, नाक गंध दुर्गंध का समाचार भरता है, जीव रस का समाचार भरती, और इन सब का समाचार कलेक्ट करके हेड क्लार्क मन मति के पास ले जाता है। अब मति जिनको हाँ बोलती है आसक्त होती, हालांकि इंद्रियां और मन आसक्त होते हैं और उनका अपना फेवरेबल बात बोलेंगे, उनको जो अच्छा लगेगा उसकी व्याख्या करेगा, उसी बात की सिग्नेचर कराने की कोशिश करते हैं। नीचे के आदमी बड़े साहब से उसी कागजों पर सिग्नेचर कराते हैं, जो कागजात जो फाइल में उनको कुछ दक्षिणा मिलती है, उनको वाहवाही मिलती है, पैसा मिलते हैं, उनकी अनुकूलता होती है, उसी दस्तावेज पर उसी फाइल पर सही कराने की कोशिश करता है नीचे का आदमी साहब से। ऐसे ही इंद्रियां तो कोशिश करेगी, देखना सूंघना चखना स्पर्श करना आदि उसी की सही कराएगी, और मति में अगर तप नहीं है तो मति वो ही करती रहेगी, तो वो ही करते करते मति मंद हो जाती है। जैसे चपरासी और क्लारकों के कहने से साहब सैया करता करता है तो साहब कभी न कभी फंस मरता है किसी न किसी पॉइंट में, जयराम जी। ऐसे ये साहबों की साहब जो मति देवी है वो फिर फंसती, वो साहब तो नौकरी गंवाता है, फंसता है तो घर बैठता है, लेकिन ये मति और ये मन तो घर क्या बैठे 84 लाख जेल भोगते, बार बार माताओं के गर्भ में जब देखने सूंघने चखने की वासना मति ने स्वीकार कर ली तो मति का स्वभाव हो जाता है कि अभी ये खाना है, ये चखना है, ये करना है, ये करना है, वो कराना है, तो ये करते कराते जिंदगी पूरी हो जाती है, फिर भी कुछ न कुछ करना करना भोगना बाकी रह जाता है। तो भोग की वासना युक्त जो मति है वो जब प्राण निकलते हैं तो अपनी मति में जिस भोग का आकर्षण होता है उसी वातावरण में फिर से ये जन्म लेता है, और फिर वही भोग भोगते भोगते दूसरे संस्कार क्रिएट हो जाते हैं, तो फिर संस्कार तो बनते जाते और भोगता जाता है, तो एक संस्कार एक वासना मिटी न मिटी तो दूसरी चले आए। जैसे हम चलो के अब 3 घंटे फिल्म देख ले, जरा इच्छा होगी फिल्म देख, फिल्म देखा तो फिल्म देखते देखते दूसरे फिल्म की एडवर्टाइज और फिल्म में दूसरी चीजें और बताई जाती है, वो चीजें बसाने की वासना जग गई, वो चीजें बसाए तो दूसरी चीज भी उसे बढ़िया घटिया वो भी बसाने की वासना हो गई, तो वासनाओं का अंत नहीं होता। इसीलिए ये जीव बिचारा परमात्मा तक पहुंच नहीं पाता, मति परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। जब परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती है तो बेचारा ये जीने की और भोगने की इच्छा से आक्रांत रहता है, जीने और भोगने की इच्छा से जो चैतन्य आक्रांत रहता है उसी चैतन्य का नाम जीव पड़ गया। वास्तव में जीव भी वो कोई ठोस चीज नहीं है, लेकिन जीने की इच्छा हो गई, भोगने जीने की इच्छा हो गई, जीव हो गया। अब उसने अच्छे कर्म किए, सात्विक किए, भोगा तो सही लेकिन जरा ईमानदारी से भक्ति से त्याग से सेवा भाव से थोड़ा बहुत अच्छे संस्कार पड़ गए तो इस लोक के भोग भोगे और परलोक में सुखी रहूं, इसलिए इसने दान पुण्य सेवा आदि किया तो इसके मति में अच्छे सुख भोगने की इच्छा आएगी, तो मरेगा तो सत्वगुण की प्रधानता रहेगी तो स्वर्ग में जाएगा। अगर इसकी हस्ताक्षर हल्की वस्तुओं को भोगने के हुए तो फिर समझो बहुत उसको नीचे की इंद्रियों का सुख भोगने की इच्छा हुई, काम बेकार भोगने की इच्छा हुई, तो मरने के बाद उसको स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं, मनुष्य होने की जरूरत नहीं, उसकी शिशना इंद्रिय को अधिक से अधिक छूट छाट मिल जाए भोग भोगने की, उसको ऐसा ही शरीर प्रकृति दे देगी, जैसे सुकर कुकर है उस शरीर में धकेल देगी, बिल्कुल कोई एकादशी व्रत नियम बच्चों को पढ़ाना लिखाना शादी कराना नो प्रॉब्लम, वो शिशना इंद्रिय के भोग में अपने को खपा दो। तो इस प्रकार जिस इंद्रिय का अधिक आकर्षण होता है उस इंद्रिय को भोग अधिक मिल सके ऐसे तन में भेज देती है प्रकृति, क्योंकि तुम्हारी मति उस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से स्फूरित है, इसलिए उसमें सत्य संकल्प होता है, देर सबेर वो काम होकर रहता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जो संकल्प करे या जजमेंट दे उसको सतगुरु शास्त्र और अपने विवेक से नाप तोल कर निर्णय करना चाहिए, नाप तोल कर इच्छा करनी चाहिए। हकीकत में इच्छा जब काटने की कला आ जाए तो वो आपका मन होगा निर्वासनिक, और निर्वासनिक मन होगा तो बुद्धि निश्चिंत तत्व में परमात्मा में टिकेगी। और मन में जितनी वासना होगी और जितनी हल्की वासना होगी तो हल्का जीवन, ऊंची वासना होगी तो ऊंचे लोक लोकांतर, और मिश्रित वासना होगी तो पुण्य पाप की खिचड़ी खाने के लिए मनुष्य शरीर। और उससे भी अगर ऊंची एक अवस्था है जो सत्संग और तप करके आत्म परमात्मा के विषय का ज्ञान पा लेगा तो प्रारंभ में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन एक बार पा लिया तो मति को, मन को और इंद्रियों को जो शांति, आनंद और रस मिलता है, उस रस, शांति और आनंद के आगे इस लोक में तो क्या और देश परदेश में तो क्या, स्वर्ग में तो क्या, ब्रह्म लोक में भी वो सुख नहीं जो ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार में। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशे भ्य, उस देव को जानने से सारे पाशों से, सारे जंजीरों से वो आदमी मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। तो मनुष्य जन्म में ऐसी मति मिली है जो आदमी भूत का, भविष्य का विचार चिंतन कर सकता है। जो पशु हैं वो तो कुछ समय के बाद अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, बहन भाई को भी भूल जाते हैं, संसारी व्यवहार उन्हीं में कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य की मति में स्मृति है, मनुष्य की मति में योग्यता है। अब दूसरी पॉइंट से सोचें कि इंद्रियां तुमको संसार के तरफ आकर्षित करेगी, लेकिन मति परिणाम का विचार करेगी। जब मति का आदर करोगे तो विकारों में से निर्विकार की तरफ जाना बिल्कुल जरूरी दिखेगा। अगर मति का आदर नहीं करोगी और इन चपरासी और कारकुनों के कहने में ही मति बहती रहेगी तो जगत सच्चा लगेगा। जगत सच्चा लगेगा तो जगत के भोग में आकर्षण होगा। जगत के भोग में आकर्षण होने से राग द्वेष पनपेगा। राग द्वेष पनमने से इच्छा, भय, क्रोध, द्वेष, अशांति, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ये बना ही रहेगा। अगर मति का आदर करते हैं तो मति परिणाम का विचार करती है। परिणाम का विचार करने से मति इंद्रियों को और मन को खाने पीने देखने की इजाजत तो देती है, लेकिन औषधवत खाना पीना देखना सुनना ये औषधवत हो जाए तो इंद्रियों और मन का परिश्रम कम हो जाता है, तो उससे भी मति को थोड़ी पुष्टि मिलती जाती है। और ज्यो ज्यो पुष्टि मिलती जाती है त्यों त्यों देखना सूंघने की इच्छाएं कम करके और मति अपने आप में तृप्त रहती है, तो तृप्त मति की योग्यता बढ़ जाती है। योग्यता बढ़ जाती है तो मन और इंद्रियां उसके अधीन होने लगती है। तो मनुष्य जन्म में ही ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब चाहा तब इंद्रियों को समेट के मन में ले आए और मन को समेट के परमात्मा में गोता मार दिया। दिल ने तस्वीरें हैं यार जब की गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, जब चाहा वो आत्म सुख पा लिया। तो मति में आत्म सुख पाने की जो आदत पड़ जाती है तो फिर वो जब शरीर छूटता है तो मति में अंतःकरण में कोई वासना नहीं रहती। जब वासना नहीं रहती तो प्राण उत्क्रमण नहीं करते लोक लोकांतर में जाने के लिए या दूसरे जन्म में भटकने के लिए। अभी तुम्हारी तीव्र वासना हो जाए चाय पीने की तो खिसक जाओगे, तीव्र वासना हो जाए तो कुछ उस जगह पे चले जाओगे। जब कोई वासना नहीं तो भाग दौड़ करने की जरूरत क्या है। जब वासना जोर पकड़ेगी तो हमारी नजर इधर जाएगी और आदमी खिसक जाएगा, तो बेईमानी भी करेगा, पैसा भी खर्चेगा, लेकिन वासना के लिए करेगा। तो ऐसे मति में कोई वासना नहीं होती। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गई, तो वह साधक जीते जी सिद्ध पद को पा लिया। तो ज्ञानिनाम प्राणा न उत्क्रामयन्ते अत्रे विलयन्ते। ज्ञानी जिसको आत्म पर ब्रह्म परमात्मा का सुख मिल गया है, साक्षात्कार हो गया, उसका मन प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं। जहां शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ तो शरीर तो पांच भूतों में स्थूल भूतों में लीन हो जाएगा और सूक्ष्म शरीर उसका सूक्ष्म भूतों में लीन हो जाएगा, व्याप जाएगा। और आत्मा तो पहले ही परमात्मा से मिला हुआ है, वो कोई परमात्मा के पास कोई लोक लोकांतर में नहीं जाएगा, वो तो सत चित आनंद स्वरूप जो आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है उस परब्रह्म परमात्मा में साक्षात्कार के दिन ही एक हो गया था। केवल देह की बाधा थी, प्रारब्ध ने देह की बाधा को पूरा कर लिया, वो व्यापक ब्रह्म हो गया। तो अब हमारे हिस्से क्या आता है कि हमारे हिस्से आता है कि हम इंद्रियों का आदर इतना न करें। तुलसीदास ने ठीक कहा है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये देखने सुनने और मन में जो गुनने विचार करने में आता है वो सब मोह मूल है, परमारथ नहीं है, वास्तविक में सत्य नहीं है। जैसे पतंगिया को दिया में सत्य सुख दिखता और जल मरता है, मछली को कुंडी में सत्य स्वाद दिखता है और फंस मरती है, हाथी को हथिनी में सत्य सुख दिखता है और खड्डे में जा गिरता है, भमरे को मुस्कम कमल में सत्य सुख दिखता टिका रहता है, हालांकि उसमें ताकत है कमल से बाहर निकलने की, और लकड़े को छेद कर सकता है लेकिन कोमल कमल से बाहर नहीं निकलता है। सांझ पड़ी चलो जवाए छे सुवा धोचे जवाए छे जाएंगे, ऐसे करते हो कमल तो बंद हो जाता है, उससे भी निकल सकता है, लेकिन फिर आकर्षण इंद्री का रस का जीवा का पड़ा रहता है। सुबह जंगली जानवर या हाथी आदि आके कमल को तोड़ते खा जाते या पैरों तले कुचल देते, वो प्राण त्याग कर देता, मर जाता बेचारा। एक बात और समझनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि हम निपट अज्ञानी हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब लोग जानते हैं, क्या पुण्य है और ये क्या पाप है ये भी काफी हिस्से में हम लोग जानते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी जानते हम लोग, फिर भी जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, उसके पीछे एक ही है कि सुख की लालच, सुख की लालच। नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं क्योंकि दुख का भय, भयभीत होकर भी कुछ करना पड़ता है, समाज क्या बोलेगा लोग क्या बोलेंगे। तो सुख की लालच और दुख के भय ने अंतःकरण को कमजोर कर दिया, मति को अपने कंट्रोल में ला दिया। तौर जैसे एक मुनीम ने सेठ को कह दिया कि मेरा 1000 रुपया पगार नहीं चलेगा, 1500 कर दो, तो एकदम इतना चला, 7 साल से नौकरी करता है, 100-100 बढ़ाता आया हूं तेरा, और अभी 1000 का 1500 मांगता है, कुछ तो सोच शर्म नहीं आती। बोले मेरे को क्या शर्म आएगी, मैं तो ये गया, लेकिन फिर तुम्हारी ये पेढ़ी नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना सेठ जी, क्योंकि 2 नंबर की एंट्री मैं सब जानता हूँ और मेरे हाथ में वो कागज पड़ा, देख लो, अभी जाकर इनकम टैक्स कमिश्नर से मिलता हूँ, 10% मिल जाएंगे, उसी से मेरे 1000 रुपए हो जाएंगे। सेठ ने कहा देख भाई बैठ इधर, ये मिठाई खा ले, ए नौकर जरा चाय ले आओ दूध ले आओ। वो मुनीम की खुशामद करके 1500 नहीं 1600 पगार दूंगा रहो, क्यों कि मुनीम जान गया सेठ की कमजोरी। ऐसे इंद्रियां और मन मति की कमजोरी जान जाते हैं, इसलिए मति को बिचारी को घसीटते रहते। जयराम जी की नीति का या मुक्ति का आदर नहीं करते और सुख की लालच रखता है मन इंद्रियां, और मति भी सुख की लालच में फिसलने लगती है और दुख के भय से भयभीत होती है, तो न चाहते हुए भी मति को हल्के निर्णय करने पड़ते, न चाहते हुए भी हल्के कामों में उसको जुड़ना पड़ता है, तो हल्का स्वभाव उसका क्रिएट हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी को प्रेरणा हुई कि तप। अब तप करने से क्या होगा कि तप करने से तेज बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। तप स्वाध्याय, तप करने से स्व का अध्ययन होगा कि मैं इनका गुलाम नहीं हूं, मैं इन इंद्रियों का गुलाम नहीं, और शरीर के मिटने से भी मैं नहीं मरता हूँ, शरीर के बढ़ने से मैं बढ़ता नहीं, शरीर के बीमार होने से मैं बीमार नहीं होता, और शरीर के मरने से मेरी वास्तव में मृत्यु नहीं होती। तो न मरने का डर, न जीने की लालच, न भोगने की वासना, ये तीनों झंझट जब निकल जाते हैं तो ये जीव आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावे निज सहज स्वरूपा। भगवान राम कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल क्या है, परम फल क्या है, कि परम फल तो यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को, जो सत चित्त आनंद स्वरूप रोम रोम में रमा हुआ है प्राणी मात्र के, वो राम को पा लेता है। जैसे थका हारा नौकरों से सताया हुआ सेठ अगर कोई अपने गब्बर सेठ से मिलता है, निकट के मित्र से मिलता है, तो उस सेठ का बल बढ़ जाता है, और नौकरों खमुनिमों का सताया हुआ अगर गब्बर सेठ से मिलता है तो उस बेचारे लथड़े हुए सेठ का हौसला जग उठता है। ऐसे जब हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं, तो सेठों का भी सेठ और उन सेठों का भी सेठ और सारे दुनिया के सेठ, तो क्या स्वर्ग के सेठों का सेठ जो परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा जी का भी जो सेठों का सेठ है वह आत्मा होकर बैठा है, तो तप करने से मति उसका सहयोग ले लेती है, उसमें शक्ति आ जाती और मुक्ति के रास्ते चल पड़ती है। तपस्व सर्वेशु एकाग्रता परम तपः, सब तपस्याओं में एकाग्रता परम तपस्या है। तो हम इंद्रियगत ज्ञान का जब आदर करते हैं तो विकारों का हमारे पर हमला बिल्कुल होगा ही। जब हम बुद्धिगत ज्ञान का आदर करते हैं तो हम विकारी सुखों का आदर नहीं करेंगे, विकारी वस्तुओं का उपयोग करेंगे। जैसे अब कहीं जाना है तो आंख का उपयोग करा, जरूरी है तो देख लिया, शरीर को टिकाना है तो तंदुरुस्ती का ख्याल करके खा लिया, सुनना है तो जो सार सार है वो बात सुन ली, बाकी को ध्यान नहीं दिया तो हमारी शक्ति बच जाती है। तो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से इंद्रियों का मन का झंझट कम हो जाता है और बुद्धि को परिश्रम भी कम पड़ता है। बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से हमारा विवेक बढ़ता जाएगा, विवेक बढ़ने से वैराग्य बढ़ेगा, संसार से राग उठ जाएगा। देखेंगे कि जितना इन वस्तुओं को संभाला, आखिर छोड़कर मरना है तो बहुत बसारा क्यों करना, इतना खिलाया पिलाया तो बीमारी, अधिक खाने से बीमारी हुई, संयम से खाना चाहिए। ऐसे आंखों को कितना कुछ दिखाया लेकिन आज तक पूरी शांति नहीं मिली, कानों को कितना ही सुनाया फिर क्या, जीभ को कितना ही लटके दिलाया फिर क्या, नाक को यहाँ बे भूंगड़ा ने अटली सुगंधी परफ्यूम अजी ठेकोणो नहीं। ऐसे ही इंद्रियों को, काम विकार की इंद्रियों को इतनी बार खपाया, अपने को निचो दिया, फिर भी संतोष तो नहीं। तो विवेक जगेगा, विवेक जगेगा तो फिर वैराग्य आएगा, क्योंकि परिणाम में क्या, भोग भोगने के समय जरा देर मजा आया, बाद में देखो तो है तेरे की। तो बुद्धि जब परिणाम का विचार करती है तो उसका परिश्रम कम होता है और उसको परमात्मा में प्रतिष्ठित होने का, समता में आने का समय मिलता है। भगवान को बुलाया भी नहीं जाता और भगवान को प्रकट भी नहीं करना है, भगवान हाजरा हजूर है। आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत, लेकिन उस भगवान के सुख स्वरूप के आगे, भगवान के आगे ये जो परते हैं, जैसे बारिशों में सूरज नहीं दिखता है बादलों के कारण, तो हकीकत में सूरज को प्रकट भी नहीं करना है, बुलाना भी नहीं है, केवल हवाएं लगे, बादल बिखरे, सूरज तो थे हैं और शाम तक रहेंगे, ये सूरज तो शाम तक रहेंगे, वास्तव में आत्म सूर्य के लिए तो कोई शाम ही नहीं है। ये सूर्य भी डूबते नहीं है, छुपते नहीं, चले नहीं जाते, दूसरी जगह दिखते हैं, पृथ्वी घूम रही, इसलिए तो हम लोग मानते कि सूर्य चले गए। मान लो इस सूर्य से तो हम कभी चक्कर खाते रात्रि का तो नहीं दिखता है, लेकिन परमात्मा रूपी सूर्य से तो हम कभी अलग नहीं हो सकते। आद सत जुगात सत है भी सत, हो से भी सत, तो उस सत्य स्वरूप में बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस सत्य स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में और जिसका अंत नहीं होता है, उस अनंत में विलय हो जाता है जीव। जैसे सागर में तरंग विलय हो जाता है तो तरंग सागर बन जाता है, क्योंकि पहले ही था सागर, पानी तो पहले ही था। ऐसे जीव ब्रह्म तो पहले ही था, लेकिन इस बेचारे को इंद्रियों का आकर्षण ने, जगत की सत्यता ने, बेवकूफी ने कई जन्मों तक भटकाया। अगले जन्म में भी किसी माता के गर्भ में गए होंगे, लेकिन पिता के शरीर से पटके गए। माता का गर्भ सीधा ही मिल जाता, ऐसी बात नहीं, कई बार माता के गर्भ में बेचारे ड्रॉप के रूप में जाके गिरते हैं, फिर वो बाथरूम के द्वारा बह जाता है गटरों में। क्या दुर्दशा होती। जितने लोग यहाँ पृथ्वी पर घूमते हैं हम लोग, उतने से अधिक तो गटरों में भी मनुष्य बहते होंगे। इस बात को तो कोई तार्किक या नास्तिक आदमी भी अस्वीकार नहीं कर सकता है, मानना ही पड़ेगा। मेरे दो बेटे हैं, कैसे कि मेरे शरीर से पैदा हुए, तो मेरे शरीर से पसार हुए, पैदा क्या हुए, पसार हुए, हमने कुछ अन्न जल आदि खाया, फल फूल, उसमें जो जीव स्थित थे वो ही पत्नी के द्वारा बेटे होके पैदा हुए। तो पत्नी में नहीं टिके, नारी में, तो रजवीर्य होकर बह गए, तो बह के कहां जाएंगे, गटर में। तो ऐसी न जाने कितनी दुखद अवस्थाएं, दुखद दिन हम लोग देख चुके हैं। ये मति को अगर समझ में आ जाए तो मति में संसार का आकर्षण कम हो जाएगा, राग नहीं रहेगा। राग नहीं रहेगा तो द्वेष भी नहीं रहेगा। जब वस्तुओं में राग रहता है, उसमें कोई विघ्न डालता है तो उससे द्वेष होता है। बड़ा आदमी विघ्न डालता है तो भय होता है, छोटा आदमी डालता है तो क्रोध होता है, बराबरी का आदमी प्रॉब्लम करता है तो द्वेष होता है। जब वासना ही नहीं तो भय कहाँ, वासना ही नहीं तो उद्वेग कहाँ, वासना ही नहीं तो द्वेष कहाँ। तो भय, उद्वेग, द्वेष, राग, ये सब उसका शिथिल हो जाता है। जब राग, द्वेष, भय, चिंता ये शिथिल हो जाएगा, वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काम होगा कि नहीं होगा, आखिर मेरा क्या होगा, ये चिंता, अब मेरा क्या होगा, हो के मन इंद्रियों का होना है, शरीर का होना है, और इसका कितना भी हुआ अंत में तो छूटना ही है। रोटी तो भगवान को देनी है और साथ में कुछ ले जाना नहीं, फिर चिंता किस बात की। रोटी तो ईश्वर को देनी है और साथ में कुछ ले जाना नहीं, जो है, जो बना है और जो भी बनाएंगे वो मृत्यु के एक झटके में छोड़ना है। ये अगर मति दृढ़ निश्चय कर ले तो आदमी की चिंता टिक नहीं सकती, और निश्चिंत होने से मति में टिकेगा तो चिंता जिस बात की करता है होगा कि नहीं होगा वो तो काम अपने आप हो जाएगा। जितना आदमी निश्चिंत होता है उतना परमात्मा में टिकती है मति, और जितना परमात्मा में टिकती उतनी प्रकृति और लोक अनुकूल होने लगते हैं। तो यही कारण है कि जो दुरात्मा है उसकी इच्छाएं पूरी जल्दी से होती नहीं, थोड़ी बहुत होती तभी भी वो दुखी का दुखी रहता, और जो धर्मात्मा है, पवित्र आत्मा है, उसकी इच्छाएं ज्यादा होती नहीं, और जो होती है उसकी तो पूरी हो जाती, उसके नाम की जो मनोती मानते उनकी भी इच्छा कुदरत पूरी कर देती, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा में टिका है, ब्रह्मवेत्ता है, आत्मज्ञानी संत है। हम संतों के नाम की मनोती मनाते हैं, तो जैसे हम है ऐसे वो तो दिखते हैं, लेकिन हम हैं इंद्रियों के आकर्षण में, हम हैं मन के कहने में, और वो हैं मन और इंद्रियों को अंतर्मुख करके, तप करके अपने प्रसाद के तरफ ले जाने। तो ब्रह्मा जी को हुआ के तप, दो शब्द, तप करो, तो कम से कम 6 घंटा नींद किए, 8 घंटा नौकरी किए, 6 और 8 14 घंटे, फिर भी 10 घंटे फालतू है। उन 10 घंटों में सत्कर्म आदि करें, जप ध्यान करें, 1 आध घंटा कम से कम ध्यान करें, तप करें, तो जैसे दूध को उबालते ना तो दूध गाढ़ा हो जाता है, रबड़ी बन जाता है, ऐसे ही मति गाढ़ी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। तो शक्तिशाली मति उन आत्मसूर्य के बादलों को हटा देगी। आत्मसूर्य, आत्म परमात्मा के ऊपर जो बादल पड़े हैं वो हटा देगी। वो बादल हटते ही डिठो मुख शन साजो हियरे थिम करार, लथा रोग शरीर जा मुझे सतगुरु दे दीदार। वो अज्ञान अविद्या के बादल हटते ही ब्रह्म विद्या के बल से वो ब्रह्म परमात्मा का प्रसाद पालेगी और प्रसाद से सारे दुख दूर हो जाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि माताओं के गर्भों में जाना आना तो दूर हो जाएगा, लेकिन इस जन्म के भी कर्म सब जल के भस्म हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान अग्नि यथा दानसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, जैसे लकड़ी के ढेर को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान अग्नि से तेरे सारे संस्कार सारे कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे। अभी तक के कर्म तो जल जाएंगे, लेकिन युद्ध करोगे और वो ऐसे हत्या जैसे कर्म भी तेरे को लेप नहीं लगाएंगे। जैसे सूर्य को उदय नहीं लगती, दिमक नहीं लगती सूरज को, ऐसे ही आत्म सूर्य के साथ एक होकर जब मति संसार में जीती है तो उसको कर्मों की दिमक नहीं लगती। पहले के कर्म जल के भस्म हो जाते और नए कर्म उसको बनते नहीं, क्योंकि उसकी मति में कर्ता भाव नहीं रहता।